ये मुरली है 10th January 1994। वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना यही सेफ्टी का साधन है। वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना यही सेफ्टी का साधन है। माया की छाया से सेफ रखने के लिए ज्ञान की लाइट माइट के स्वरूप में स्थित कराने वाले सर्वस नहीं बाप दादा बोले। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर वन पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर वन का है लेकिन लक्षण नंबर वार है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों? ज्ञान दाता बाप एक ही है, योग की विधि भी एक है। गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है, उसके बाद भी लक्षण नंबर वार है, यह अंतर क्यों? जबकि ज्ञान दाता एक, योग की विधि एक, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबर वार होने का विशेष आधार है ही एक ही शब्द पॉइंट, पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना। तो बाबा पॉइंट शब्द के लिए कह रहे हैं बिंदु, पहला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना। दूसरा
उसमें स्थित हो
जाना, पहला ही तो वो है पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना। दूसरा दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा बिंदु को याद करना। और चौथा पॉइंट को याद करना, ज्ञान की पॉइंट्स को। बाबा कहते हैं तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति स्वयं समय पर कार्य में लगाना। तो नंबर वार होने का विशेष आधार एक ही शब्द है पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। और तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को क्या करना? मनन करना। मनन करोगे तो शक्तिशाली बनोगे बाबा ने कहा है। तो ज्ञान की पॉइंट्स का मनन, धारणा की पॉइंट्स का मनन, स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है लेकिन तीन स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति उसको रहती है लेकिन स्मृति सबको रहती है लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना इसमें नंबर वार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार है, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं राइट है ये रॉन्ग है। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है, ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट। नॉलेज इज माइट कहा जाता है, तो जहाँ लाइट भी है माइट भी है वहाँ ये होना चाहिए नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो है, बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है ही कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते ही अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे? ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, क्या कहेंगे इसको? पता है ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं भक्त कहेंगे या तो अधूरे ज्ञानी, हाफ हाफ का ज्ञानी, रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाबा को भी नहीं पता चल रहा है क्या देना चाहिए ऐसे को टाइटल। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं, तो बाबा यहाँ एक पॉइंट शब्द के लिए कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आत्मा, दूसरा पॉइंट जो कुछ छूट गया, जो कुछ खो गया, जो कुछ बीत गया उसको पॉइंट लगाना। परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है अगर उसे कहा जाए कि इसको याद नहीं करो तो किसकी याद आती है फिर? अगर मनुष्य को कहा जाए कि ये जो चीज है इसको भूल जाओ तो वो सबसे ज्यादा याद आते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ये मनुष्य का स्वभाव है। उसको अगर कहा जाए इस चीज से दूर रहना है, छोटे बच्चे को अगर कहो कि इस चीज को नहीं देखना है तो सबसे पहले वही चीज देखना चाहता है। स्वभाव है मनुष्य का। जैसे दिखाते हैं एक फकीर था, उसके पास एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ मंत्र दे दो, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। फकीर ने कहा मेरे पास मंत्र वगैरह थोड़ी होता है, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मंत्र चाहिए तो जादूगर के पास जाओ, मदारी के पास जाओ, मेरे पास नहीं जाओ। और जब भी ऐसा कोई कहता है कि मेरे पास नहीं है तो उत्सुकता और बढ़ जाती है शिष्य की कि इन्हीं के पास है। ऐसे कुछ कुछ योगी और साधु और तपस्वी हुए हैं जो कि अपने भक्तों को पत्थर मारते हैं, जितना वो पत्थर मारते उतना ही भक्त उनके पीछे और जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके पास कुछ है। तो वो गुरु के पास, उस फकीर के पास रोज रोज जाता है, रोज रोज जाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए। गुरु कहता है मेरे पास नहीं है, वो कहता है मुझे चाहिए, वो रोज जाता है। एक दिन वो फकीर उसे एक कागज देता है और उसमें एक मंत्र लिख देता है और कहता है कि इस मंत्र को केवल 5 बार अगर तुम पढ़ लो अमावस की रात में तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कहता है अच्छा इतना आसान है? मतलब बिल्कुल आसान है। और जब जाने लेकर निकलता है तो कहता है बस एक बात याद रखना, जब मंत्र पढ़ोगे बंदर को याद मत करना बस। तो बोलते बंदर को, मैंने आज तक कभी बंदर को याद ही नहीं किया, मैं क्यों याद करूं बंदर को? बंदर को याद करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, मेरा तो कोई नाता ही नहीं है उनसे, तो मैं क्यों याद करूंगा? तो बोलते बस इतना याद रखना कि बंदर तुम्हें याद ना आए, और 5 बार इस मंत्र को अगर तुम पढ़ लिए तो तुम सिद्धि स्वरूप हो जाओगे। तो वो तो बड़ा खुशी खुशी से बिना धन्यवाद किए, क्योंकि इतनी खुशी हो गई है उसे कि मंत्र मिल गया जिसे सिद्धि होने वाली है, वो निकलता है अंधेरी रात से और बंदर उसके साथ साथ। वो जाता है अंधेरों से, झाड़ियां दिखती है, ऐसा लगता है शायद कोई बंदर वहां पर है। फिर घर पहुंचता है, घर पहुंचता है और सोता है, आंखें खुली होती है तो ऐसा लगता है खिड़की पर बंदर खड़ा है। फिर जब सब सोता है सपने में बंदर, उठता है तो बंदर चिढ़ा रहे हैं उसको, बंदरों का एक झुंड सामने खड़ा है और उसको चिढ़ा रहे हैं। स्नान करने जाता है तो बंदर फिर भी साथ साथ है, आंखें खुली है तो बंदर, आंखें बंद है तो बंदर, जहां देखता है केवल बंदर ही बंदर दिखता है। वो सोच में पड़ जाता है इस बंदरों से मेरा क्या नाता है, ये तो मेरे कोई संबंधी भी नहीं है दूर के। फिर भी दिन रात वो बंदर, फिर जब मंत्र पढ़ने बैठता है वो कागज निकालता है तो उसमें भी बंदर सामने दिखता है, जहां देखता है बस एक ही चीज दिखती है, बंदर बंदर बंदर। इतना पागल जैसी अवस्था हो जाती है उसकी कि मुझे अभी ये सिद्धि नहीं चाहिए। मतलब वो मंत्र और बंदर जैसे संयुक्त हो गए, जैसे मंत्र को याद करता है साथ में बंदर याद आता है, वापस गुरु के पास जाता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये। वो कहता है कि इस जन्म में अभी ये संभव ही नहीं है मेरे लिए, ये मंत्र पढ़ना असंभव है, मैं किसी और अगले जन्म में आऊंगा अब तुम्हारे पास मंत्र की सिद्धि के लिए। तो मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सोचता है कि मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे नहीं याद करना है, वो उसे और याद आता है। अगर ये संकल्प करो कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है तो कभी कभी उल्टा परिणाम होता है, व्यर्थ ही व्यर्थ आने लगता है, व्यर्थ ही व्यर्थ। कभी संकल्प करते मुझे संपूर्ण पवित्रता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, तो वहीं पर काम का अटैक होता है। संकल्प करते मुझे ये चीज देखनी ही नहीं है तो बार बार वही चीज देखने की इच्छा होती है, क्या है उसमें। तो इस तरह का चिंतन न करके उसका चिंतन करना है गहराई से, कि जिस चीज से छूटना है उसको थोपनी नहीं है अपने ऊपर। अगर मन को कह दो, कई ऐसे गृहस्थी आते हैं जो कहते हैं कि 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और अचानक काम विकार ने वार किया, अज्ञात, पता ही नहीं कैसे हुआ ये, हम तो सिर्फ अच्छे से ज्ञान में चल रहे थे। वो काम वासना कहीं ना कहीं दबी रह गई, दमित वासना है, एक ना एक दिन उसको निकलना ही है, क्योंकि दबा के रखा था, कहीं ना कहीं दब गई वो, उसको पूरी रीति से समझा नहीं, वो उस बंदर की भांति वापस निकल कर आ जाती एक दिन। तो जिस चीज से हमें मुक्त होना है, जिस संस्कार से हमें मुक्त होना है, जिस आदत से हमें छूटना है, वो केवल प्रतिज्ञा के रूप से नहीं होगा। केवल प्रतिज्ञा कर ले, अगर कोई सिगरेट पीता है, दारू पीता है और वो प्रतिज्ञा करता है मुझे आज से नहीं पीना है, बाबा ने कहा दृढ़ता तो करनी है, दृढ़ता तो हो, परंतु उसको समझना है पहले। अगर बिना समझे अगर किया कुछ तो वो बार बार आएगी वापस। त्याग करना अर्थात महान आत्मा एक ही बार त्याग करती है, बार बार नहीं। जिस चीज का एक बार त्याग कर दिया फिर उसे कभी नहीं स्वीकार करना। तो हमारा वो त्याग करने की, हमारी जो प्रतिज्ञा करने की, इतनी जल्दी नहीं करो, कुछ समय लगाओ उसके ऊपर, सोचो उसके ऊपर, चिंतन करो। अगर कुछ पास्ट की बातें हैं जो हमें बार बार याद आती है, इसका मतलब हमने उसे अभी तक भस्म नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है, केवल दबा दिया है। हम यहाँ आ गए, हम ज्ञान योग में डूब गए, इतना डूब गए कि वो बात भूल गई है, पर समाप्त नहीं हुई है, वो है। और जैसे ही अवसर मिलेगा, 10 साल पहले किसी के प्रति बहुत घृणा थी और फिर हमें ज्ञान मिल गया, हम ज्ञान में आ गए, ज्ञान के सारे राज और रहस्य बुद्धि में समा गए, हमने अपने आप को कहा कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मेरी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है, और कभी किसी आत्मा के प्रति, और भूल गए कि कभी थी, और ऊपर उसका चिंतन नहीं किया, छोड़ गए, छूट गया वो, और अचानक 10 साल के बाद वो आत्मा सामने आ जाती है, तो वही घृणा भाव वापस उत्पन्न हो जाता है और हमें लगता है ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया ये, क्योंकि वो दमन हुआ था वहां पर। जिस वासना, जब भी वासनाओं का दमन होगा वो बाहर निकलेगी, जब जब इच्छाओं का दमन होगा वो बाहर निकलेगी। किसी को लौकिक में बहुत प्रसिद्ध होने की इच्छा है और फिर अचानक ज्ञान मिल गया और फिर वैराग आ गया, कुछ नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और फिर 10 साल के बाद वो इच्छा वापस उत्पन्न होगी। अभी वो दूसरे रीति से उत्पन्न होगी, ज्ञान में प्रसिद्ध होना है, वो पहले इच्छा थी लौकिक में, अभी अलौकिक में। जैसे क्रोध, शांतिनाथ का बताया था ना, पहले भी क्रोधी था, बाद में जो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, या फिर जो व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति होती है जिनको अपना वर्चस्व का दिखाना होता है कि हम बहुत श्रेष्ठ है, फिर जब वो भक्ति करने लगते या शास्त्र पढ़ने लगते हैं, उसके बाद में उन्हें ये दिखाना होता है कि मैं जिस सिद्धांत को मानता हूँ वही सत्य है। जिस धर्म, कोई एक संस्था से वो जुड़ जाता है व्यक्ति, तो ये सोचता है कि बस यही सत्य है। भक्ति में भी इस तरह का दिखाते हैं। तो जो भी दमन किया हुआ है, दबाया हुआ है, वो बाहर निकलेगा। इसके लिए रूपांतरण चाहिए, उसको देखना, अपने ही मन को देखना, कौन सी बातें अभी तक वहां पड़ी हुई है कि जिसको अभी तक हमने भस्म नहीं किया है। जो भी बीती बातें, बीती बातों को ऐसा फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम, कि वापस वो आए ही ना। उसके लिए इतना आसान नहीं है, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, अंतरतम में देखना पड़ेगा कि ये कौन सी वो बात है, ये है, उसका लिंक कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ है, उसका बीज कहाँ है, क्यों ये बार बार अब तक याद आती है। किसी ने किसी से पैसे उधार लिए, एक व्यक्ति ने, एक भाई ने किस दूसरे भाई ने एक भाई से पैसे लिए, और जिसने पैसे लिए थे वो भूल गया कि मैंने पैसे लिए, और दोनों एक ही सेंटर में, और जब भी वो भाई सामने आके बैठता है तो इसको वही दिखता है बस कि इसने अभी तक पैसे दिए नहीं है और सामने वाला तो भूल चुका है, सामने वाले को याद ही नहीं है, तो अभी क्या करना है। ये भी एक, जैसे कितना भी सोचो कि मुझे तो भूल जाना है, भूल जाना है, भूल जाना है, वो भूलता नहीं। जैसे वो भाई दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है, वो एक ही संकल्प याद आता है, इसने पैसे दिए नहीं है। तो ऐसी जो परिस्थितियां है जीवन की, उसमें हमें गहराई से अंतर में जाकर उसको रूपांतरण करना होगा, दबाना नहीं होगा। फिर ये सोचो कि मुझे चाहिए ही नहीं, अब हिसाब किताब था, पूरा हुआ बस। तो बाबा कहते हैं, पहला पॉइंट है स्वयं को पॉइंट समझना, पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना, आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना। दूसरा पॉइंट है, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना। संकल्प अगर व्यर्थ है, अभी तक आ रहे हैं, जो पहले भी आते थे, अभी बीच बीच में आते, आने कम आते हैं पर अभी भी आते हैं, वो क्यों आते हैं? एक भी आना अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक भी आ रहा है उसकी लिंक बहुत बड़ी है, अंदर ही अंदर सूक्ष्म धागे है बहुत। बोल, कर्म, कर्म तो बहुत स्थूल हो गया, सबका आधार तो संकल्प है, तो उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की पॉइंट को मनन कर स्व प्रति और सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। जब तक पॉइंट का मनन नहीं किया जाएगा, वो स्वरूप में, प्रैक्टिकल में नहीं आएगी। वो सुनने को बहुत अच्छी लगती है, लिखने को बहुत अच्छी लगती है, सुनाने को बहुत अच्छी लगती है, समझाने को बहुत अच्छी लगती है, परंतु वो थियरी है, उसका स्वरूप नहीं है। जब तक आत्मा एकांत में चिंतन नहीं करती उस बात के बारे में, सोचती नहीं, तब तक वो उसका स्वरूप नहीं बन सकती। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा एक एक बात को अपने अंदर पहले समाती थी और फिर ही उसको सुनाती थी। उसको ज्ञान की ऐसी प्यास थी, चात्रक पक्षी की तरह तरसती थी जैसे कि मुरली के लिए, ऐसी हमारी प्यास हो। कभी एक बार किसी ने मम्मा से कहा कि मम्मा इस विषय में रिकॉर्डिंग करना है, आप कोई भाषण दो, अच्छा कुछ बोलो। तो मम्मा ने सीधा मुरली उठा के लेके आई और पढ़ना चालू कर दिया। बस बोले, मेरा क्या है, अपना कुछ नहीं, जो है बस ये बाबा का है। तो इतनी उसमें लगन, उतना उसमें फेथ, निश्चय, उन एक एक महावाक्यों में, जैसे कि पक्षी प्यासा, पक्षी पानी के लिए इंतजार करता है ना चात्रक पक्षी, वैसे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स लगाने, इसमें एक तो है बाप को याद करना, वो आत्मा में आ गया, वो नहीं बोला आज। तो बाबा कहते हैं अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। भूकंप आया, यहाँ बैठकर हमने सकाश दे दी और ओम शांति, फिर भूल गए। पर विकराल परिस्थिति, विकराल प्रकृति का रूप को जानना, उसमें अचल रहना, यहीं बैठकर उन चीजों का अनुभव करना कि ऐसा अगर यहां हो जाए तो मेरी क्या स्थिति होगी। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप दिखाती है जो क्या करती है, रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जो माया के वश है उसे ये पता ही नहीं कि वो रॉन्ग है, वो सोचता है मैं राइट हूं। बाबा ने कभी कहा है ना 2010, माया के दो रूप, पहला मैं राइट हूं, दूसरा व्यर्थ संकल्प। मैं राइट हूं है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में भी होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। तो यहाँ बाबा रॉयल माया की बात कर रहे हैं, रॉयल, जो भी अव्यक्तवाणी में भी था ना, मैं राइट हूं, मेरा पुरुषार्थ, मेरी समझ यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है, मेरी निर्णय शक्ति, मेरी हैंडलिंग पावर्स बहुत अच्छी है, मेरी टचिंग, तो ये सब रॉयल माया है। हर एक की रॉयल माया अपनी अपनी है, हर एक की। चिमन भाई आपकी कोई रॉयल माया की है ही नहीं, याद नहीं? बहुत अच्छी बात है फिर तो, मतलब है ही नहीं। नागेश भाई रॉयल माया, हर एक की रॉयल माया अपनी अपनी है,
पता नहीं चलने देता है,
पता ही नहीं चलने देता है। माया को जानना बाप को जानने से पता नहीं कितना गुना अधिक कठिन है। बाबा ने तो स्वयं का स्वयं परिचय दे दिया, परंतु माया नहीं देती है। समझ नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है क्या क्या। कल कहा ना, ये जो बातें हैं छोटी छोटी माया की आग है, विकारों की आग है। क्या कुछ कहा?
माया बहुरूपी है।
माया तो बहुरूपी है,
माया तो नेचुरल समझ,
माया को नेचुरल समझते हैं। तो
राज न जानने के कारण केस
होती है। राज न जानते, कहीं ना कहीं मिस करते हैं, इसके लिए नाराज होते हैं और फिर केस लेके जाना पड़ता है काजी के पास। तो माया को जानना ये रॉयल माया है, बहुत ही सूक्ष्म बात है, बहुत ही सूक्ष्म, ये भी माया है। ये कहाँ पता चलता है हमको? बहुत अच्छा लगता है। मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे, महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। सबसे पहली चीज क्या करती है माया, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। उसके लिए खबरदार अटेंशन का पहरा होना चाहिए निरंतर, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि ये भी माया है। क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप से अपना कार्य कर रहा है, समझा? अभी क्या करेंगे, केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। अगर कोई आत्मा इशारा देती है तो, अगर आत्मा इशारा देती है किसी को तो गुस्सा आता है ना, अगर कोई करेक्शन दे हमको तो उसको लगता है ये कौन है बताने वाला, तुम अपना देखो। लगता है ना, ختم ہو جانا. کیونکہ من میں نگیٹو بھاو اور بھاونا پیدا کرنے کا وشیش مایا کا پربھاو چل رہا ہے اور بدھی میں یتھارتھ محسوستا کو سماپت کرنے کا وشیش مایا کا کاریہ چل رہا ہے. مایا کون سا کاریہ کر رہی ہے ابھی اس سمے؟ مایا کی کون سی سیوائیں ہیں؟ مایا اپنی اپنا بنانے میں لگی ہوئی ہے. سب سے پہلا کام کیا کر رہی ہے؟ وہ نگیٹو بھاو اور بھاونا پیدا کرتی ہے اور بدھی میں یتھارتھ محسوستا. من میں نگیٹو بھاو اور بھاونا اور بدھی میں محسوستا کی شکتی کو سماپت کرنے کا کاریہ. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ مرلیوں میں ساکار مرلیوں میں بہت ساری باتیں اتنی سپشٹ نہیں آتی. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید کسی مرلی میں نہیں دکھ رہا ہے ہم کو. ہم نے جتنا پڑھا ہے ہم نے جتنا سمجھا ہے شریمت کو, کیونکہ بہت ساری شریمت تو ہم کو یاد ہی نہیں رہتی ہے. ایک سال پہلے جو مرلیاں چلی ہم کو کہاں پتا ہے, اس میں سے بہت ساری چیزیں وسمرت ہو گئی ہے. بابا نے تو کہہ دیا بہت ساری شریمت, بابا نے کہہ دیا نہ تمہیں لوکک نہ الوکک کوئی بھی جنم دن نہیں منانا. شریمت دے دیے بابا نے, نہ لوکک نہ الوکک. پر ہمیں یاد رہتا ہے, وسمرت ہوتا ہے گیان, بہت ساری چیزیں وسمرت ہوتی ہیں. محسوس تک کی شکتی کتنا محسوس ہم نے کیا ہے شریمت کو. شریمت ہمارا جیون بنی ہے کیا؟ ہمیں پہلے تو پہلے شریمت پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ سب فرسٹ اسٹیپ. ہر چیز کے لیے اس سنسار میں ایسا کوئی وشے نہیں ہے جس کے وشے میں بابا نے بولا نہیں ہے. اگر ہم ڈھونڈنے نکلے ساری مرلیوں کو, ایسا اس سنسار میں کوئی ٹاپک نہیں ہے. سنسار کا ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے, کوئی بھی ٹاپک نہیں ہے جس کے وشے میں بابا نے بولا نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے بارے میں بابا نے بولا نہیں ہے. وہ شاید کسی مرلی کی چھوٹی سی ایک لاسٹ لائن ہوگی, ہم نے 10 بار پڑھی پر وہ ہماری ہم کو اسٹرائک نہیں ہوا. جب ایک دن کسی کے مکھ سے وہ نکلی کہ وہ وہاں ہے تب ہم کو لگا رہے یہ بھی ہے. تو کتنا اس گیان کا منن چاہیے, کتنا اس گیان کا چنتن چاہیے, کتنا بار بار سوئم کو بس اسی میں لگا کے رکھنا ہے تو کہیں ہر چیز کے بارے میں پتا چلے گا. کیونکہ ہمارے جیون میں روز نئی نئی پرستھتی آتی ہے صبح سے لے کے رات تک. ابھی میرے ہی سامنے ایک ایسی پرستھتی آ گئی. ایک پیشنٹ تھا جو کہ بہت سیریس تھا, پر اس کا جو پتی تھا وہ اس کو اتنا نہیں تھا اس کے بارے میں. پیشنٹ وینٹیلیٹر پر تھی, پیشنٹ ایچ آئی وی پازیٹیو نکلی, پیشنٹ کی کڈنی فیل, جب فرسٹ ٹائم لے کے آئے, 30 سال کی عمر ہے, فرسٹ ٹائم ابھی لے کے آئے تھے 5-6 دن پہلے, تو کریاٹینین اس کا 10 تھا, مطلب کڈنی دونوں فیل, یورین آؤٹ پٹ بالکل نہیں. تو اس کو سب کچھ دوائی چالو کیا, ڈائلسس کیا ایک یا دو بار, پر وہ اس کا پتی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس کا بھائی یا کوئی, وہ ایسا تھے کہ وہ چلو مر گئی تو بھی ٹھیک ہے. اور پوچھتے تو تھے کیسی ہے پرنتو ان کو اتنا اس کے بارے میں کچھ نہیں تھا. تو 3 دن تو وینٹیلیٹر پہ رکھا, وینٹیلیٹر سے جب نکالا تو ہم نے کہا ابھی پیشنٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہونے کی سمبھاونا ہے, رکو تھوڑا اور انتظار کرو. وہ بولے نہیں ہم کو لے کے جانا ہے گھر. میں نے کہا اس کا کچھ بھروسہ نہیں کیونکہ ابھی تک یورین چالو نہیں ہوا ہے نا, ابھی تو اور 3-4 ڈائلسس لگیں گے, شاید اس کے بعد ہو سکتا ہے پر بچنے کی سمبھاونا بہت زیادہ ہے. تو بولے ہم کو لے کے ہی جانا ہے. اتنا جھگڑ کے سب کچھ کر کے گھر لے کے گئے. ہم کو تو لگا ابھی شاید چلی جائے گی. اب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کل دوپہر کو واپس لے کے آئے کہ ابھی علاج کرو. پہلے تو جھگڑا کیا, جھگڑا ان دا سینس کہ ہم کو نہیں رکھنا ہے, ہم کو تو جانا ہی ہے, جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے. تو بابا کہتے رحم دل. میں نے ان سے بات تو زیادہ نہیں کی, پرنتو پیشنٹ کو ایڈمٹ کرا لیا اور اس کو شاید آج واپس صبح ڈائلسس کرنا پڑے. پرنتو یہ ایسی پرستھتی ہے کہ ویکتی جو ہے جھگڑا کر کے جا رہا ہے, سب کچھ کر کے جا رہا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے, اور پھر واپس آ جاتا ہے. ابھی اس سمے اگر اس سے جھگڑا کرو, اس سے کہو کہ پہلے کیوں لے کے گئے تھے, ابھی ہم نہیں کریں گے, ایسے اس طرح کے بھی بھاو اتپن ہو سکتے ہیں. پرنتو پھر یہاں وہ گیان کی ساری پوائنٹس ترنت जैसे कि मुझे जैसे कल फोन आया 12-1 बजे कि वो राधा कृष्ण वापस आ गई है, बोला वापस आ गई, तो पहला ही संकल्प आया कि ऐसे कैसे वापस आ गई, क्यों भाई अभी बोलो उनको अभी, मतलब फिर थोड़ा सा रोक के जैसा ज्ञान याद आया तब शांत होगा तुरंत कि बाबा ने कहा है रहमदिल। कल कहा ना जैसे तुम दूसरों की के दुखों के ऊपर रहमदिल होते हो वैसे संस्कारों के ऊपर रहमदिल, ये पॉइंट जब याद आई तब बुद्धि एकदम शांत हो गई, वो ज्ञान याद आया तो शांत हुआ, नहीं तो उत्तेजना थोड़ी सी तो हो ही गई थी। तो हर दिन नई परिस्थिति है, हर दिन वो महसूस था कि शक्ति वहां समाप्त हो जाती है। क्रोध, हम सोचते हैं हम क्रोध से मुक्त है, पर क्रोध क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां ही नहीं है। परिस्थिति आनी तो फिर क्रोध आता है, अगर कोई झूठा आरोप लगा दे तब पता चलता है क्रोध। हम सोच रहे हम तो क्रोध से मुक्त है, क्रोध तो हमको आज तक हुआ ही नहीं, 5 साल में कभी आया ही नहीं, मैं तो संपूर्ण क्रोध से मुक्त हूँ। परंतु जैसी परिस्थिति और ट्रिगर आएगा तब आएगा, जैसे कहोगे कोई पवित्रता के कलंक लगाए, अपवित्रता की बात अगर तो आपके बारे में फैलाई जाए तो क्रोध आएगा, फिर तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। इसके लिए परिस्थितियां आनी ही चाहिए, उससे पता चलता है ज्ञान को कितना समझा है, नहीं तो हम तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमको तो सारी पॉइंट्स पता है, ज्ञान बुद्धि में है, परंतु धारण कितना किया है, समझा कितना है, कितनी वो महसूस था कि शक्ति है हमारे अंदर। जैसे मैं अभी कल ही पढ़ रहा था कि एक बार ब्रह्मा बाबा के पास एक ऑफिसर आया जो कि जिसने संस्था के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां सुन रखी थी, तो बाबा उसको समझा रहे थे कि मैं किसी को भगाता नहीं हूं, मतलब ऐसी भ्रांतियां कि ये भगाते हैं जादू करते हैं, बाबा उस ऑफिसर को समझा रहे थे कि मैं किसी को भगाता नहीं हूं, यहां तो हम ज्ञान श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार से तो बाबा छुड़ाने आया है। उसी समय मम्मा और ब्रजेंद्र दादी बगीचे में घूम रहे थे, उन्होंने ये बात सुन ली, और उस समय उन दोनों ने भी कुछ कुछ गहने पहने हुए थे। यहाँ बाबा क्या समझा रहे थे कि बाबा तो किसी को भी वो श्रृंगार थोड़ी कराता है, बाबा तो ज्ञान श्रृंगार कराता है, बाबा किसी का घर बार थोड़ी छुड़ाता है, वो तो ज्ञान से श्रृंगार करता है। तो मम्मा और ब्रजेंद्र दादी ने ये बात सुनी, जिन्होंने अभी भी थोड़े थोड़े गहने पहने, बहुत पहले की बात है, गहने पहने हुए थे, और तुरंत उनको स्ट्राइक हुआ कि हमारे ये झूठे गहनों से बाबा के बोल झूठे हो रहे हैं। और उसी दिन दोनों ने, ब्रजेंद्र दादी ने मम्मा से कहा कि इसके ये जो वाक्य ब्रजेंद्र दादी का है, और दोनों ने उसी दिन से गहने त्याग कर दिया। और जिस दिन इन दोनों ने गहने त्याग किया, यज्ञ में जितनी कन्याएं और जितनी माताएं थे, इसी दिन से सबने गहनों का त्याग कर दिया। वो कितनी पावर थी उस इशारों से समझने की, उनको बोला ही नहीं है बाबा ने, उनको तो कभी बोला ही नहीं, बाबा तो देखते हो कि ब्रजेंद्र दादी को तो बाबा बचपन से बहुत सजाते थे, उनकी बेटी थी ना, बहू थी, कितना उसको सजाते थे, तो डायरेक्ट तो बोला भी नहीं, अभी रोज देखते होंगे फिर भी बोला नहीं, बोला किसको, किसी और को, सुना किसको नहीं, उन्होंने नौलखार। तो कितना, मतलब कितनी पावर है उसको समझने की, और यहाँ तो सारा कुछ दे दिया है हमारे सामने, सारा ज्ञान है सामने, फिर भी हम अपने रीति से उसको सुविधाजनक, फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक श्रीमत, हमने यथार्थ समझा नहीं है। बिस्किट तो मशीन का है, खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हम बातें हमारे पास। अच्छा, बाकी का कल पढ़ेंगे। ओम शांति।